नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। घड़ी में समय हुआ है 8:30 का और ये समय होता है खेल जगत की खबरों को सबेट कर लाने का, उन पे चर्चा करने का। स्वीकार कीजिए लवली निगम का नमस्कार और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
तो मनोज, देखा जाए आज बहुत सारी एथलेटिक्स की भी खबरें हैं हमारे पास, फुटबॉल की भी हैं, बैडमिंटन की भी हैं, तो आज शुरुआत ऐसा करते हैं एशियन एथलेटिक्स से करते हैं।
जरूर।
पहले सुर्खियां। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की मिक्स्ड रिले टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। मैनचेस्टर सिटी ने लगातार चौथी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल का खिताब अपने नाम किया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू। भारत के प्रमुख पैरा शटलर सुकांत कदम, तरुण और सुहास ने पैरालंपिक में जगह बनाई। शुरुआत करते हैं हम 4x400 एशियन एथलेटिक्स, जहां भारत की मिक्स टीम ने जो है राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक भी जीता। भारत की जो चौकड़ी थी उसमें मोहम्मद अजमल, ज्योतिका श्री, अमोज जैकब और शुभा वेंकटेश की जोड़ी थी। 3:14.12 का समय लिया, स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मनोज, एक बड़ी उपलब्धि, लेकिन पेरिस ओलंपिक के लिए नहीं हम क्वालिफाई कर पाए क्योंकि हम 21वें नंबर पर थे, जबकि पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए टीम को 15वें या 16वें नंबर पर रहना जरूरी था। एक वो दुख जरूर रहा कि हम पेरिस ओलंपिक का टिकट नहीं कटवा पाई 4x400 मीटर की रिले टीम, लेकिन नेशनल रिकॉर्ड बने तो कहते थोड़ा मरहम लगा होगा।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन बाजी मार लीजिए चेक रिपब्लिक ने और इटली ने 15वें और 16वें स्थान के लिए, क्योंकि दो जगह ही खाली थी जैसा कि आपने बताया, क्योंकि 14 टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी। लेकिन संतोष की बात यह है कि जो इन्होंने एशियन रिकॉर्ड पहले बनाया था उसमें इन्होंने और जो है सुधार किया, क्षमा की जगह नेशनल रिकॉर्ड में और ज्यादा सुधार किया है। तो हांगझाऊ एशियन गेम्स में जो प्रदर्शन किया था उससे ये टाइमिंग अच्छी टाइमिंग है, उससे बेहतर टाइमिंग है। तो ये अपने आप में एक थोड़ी राहत भरी खबर है कि इस बार नहीं क्वालिफाई किया, लेकिन हम आगे ऐसी प्रतियोगिताओं में आगे क्वालिफाई करेंगे और हमारे बढ़ते हुए कदम जो है तेजी के साथ भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए एक अच्छा संकेत है।
जाहिर तौर पर हम यही चाहेंगे कि नेशनल रिकॉर्ड अगर बनाया है तो आगे वाली प्रतियोगिताओं में जरूर कोई ना कोई पदक जीते। उधर जापान के कोबो में चल रहा है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जहां दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पहला स्वर्ण पदक जीता। 20 वर्षीय दीप्ति अमरीका की बिरयानी क्लास का 55.12 सेकेंड का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। और इसके अलावा पुरुषों के डिस्कस थ्रो स्पर्धा में योगेश कथुनिया ने रजत पदक जीता है, प्रीति पाल ने इसका कांस्य पदक जीता है। हाई जंप स्पर्धा में निषाद कुमार ने रजत पदक। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के अब तक 4 पदक हो चुके हैं, 1 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य पदक शामिल है। पैरा एथलेटिक्स हो चाहे पैरालंपिक्स हो, कुछ भी हो, पैरा एशियन गेम्स हो, हमारे खिलाड़ी लगातार कह रहे हैं परचम लहरा रहे हैं। और अब देखिए यहां तो न सिर्फ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी बनाया।
जी हां बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो निरंतर इनके बढ़ते हुए कदम, क्योंकि हमने एशियन पैरा गेम्स में देखा था इनको स्वर्ण पदक जीतते हुए और उसके बाद फेडरेशन कप में इन्होंने पैरालंपिक का एक कोटा हासिल कर लिया, तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव इन पर नहीं था जिसका इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। अपनी जो निरंतर इनकी जो कामयाबियां थी उनमें एक पन्ना उन्होंने और जोड़ा, क्योंकि वहां एशियन रिकॉर्ड जो इन्होंने बनाया था 56.18 सेकंड के साथ बनाया था, यहां इन्होंने 55.06 सेकंड के साथ उस रिकॉर्ड में सुधार किया। वो एशियन रिकॉर्ड था, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हमेशा ही अच्छा हो, कई बार एशियन रिकॉर्ड भी वर्ल्ड रिकॉर्ड से अच्छा होता है क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है उस पर बहुत निर्भर करता है। लेकिन अगर एक भारतीय खिलाड़ी एशियन रिकॉर्ड बनाता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, अपने पुराने प्रदर्शन में सुधार करता है, तो इसका मतलब है कि जो और पैरालंपिक से पहले ये बहुत अच्छा साइन है, वो बिल्कुल सही ट्रैक पर है।
बैडमिंटन में भी अच्छा ऐसे ही है क्योंकि भारत के प्रमुख पैरा शटलर सुकांत कदम, तरुण सुहास ने पेरिस में होने वाले पैरालंपिक्स में जगह बना ली है। सुकांत कदम पहली बार पैरालंपिक्स में भाग ले रहे हैं और ये पुरुषों की SL4 श्रेणी में खेलेंगे। ये वो श्रेणी होती है जिसमें खिलाड़ियों के पैरों में विकलांगता होती है। तरुण और सुहास ने भी श्रेणी में क्वालिफाई किया है। तो वही जो हम बात कर रहे हैं, शटलर हो चाहे एथलीट्स हो चाहे कुछ हो, जो एक बार एक रास्ता खुला कि पैरालंपिक में भी हम खेल भी सकते हैं और पदक भी जीत सकते हैं। अब देखिए, पहले हम पैरालंपिक या एशियन गेम्स की बात भी नहीं करते थे, और अब इतने अच्छे खिलाड़ी आ गए हैं कि पदक भी जीत रहे हैं, रिकॉर्ड भी बना रहे हैं।
जी बिल्कुल, सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने अभी पिछले दिनों कहा भी, खेल मंत्रालय की तरफ से एक आशय में कहा गया कि पैरालंपिक हमारी प्राथमिकता है। तो अगर आप ओलंपिक में दहाई की संख्या तक जूझना पड़ता है आपको वहां तक पहुंचने के लिए, वो भी अपने आप में उपलब्धि कम नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर आप पैरालंपिक में 25 या 25 से अधिक पदक जीतने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है 25 30 10 से तो कहीं ज्यादा होते
हैं। ज्यादा आते हैं जी। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। मैनचेस्टर सिटी ने लगातार चौथी बार इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग का खिताब जीत लिया है। मैनचेस्टर की टीम ने कल वेस्ट हैम को 3-1 से हराया और खिताब पर कब्जा किया। और मनोज, मैनचेस्टर ने 8वीं बार ईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की है। 91 अंक के साथ सिटी पहले स्थान पर रही, जबकि आर्सेनल के 89 अंक थे, वो दूसरे स्थान पर रहा। तो मैनचेस्टर सिटी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि की 8वीं बार रिकॉर्ड अपने,
8वीं बार और लगातार चौथी बार, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और दरअसल ये त्रिकोणीय मुकाबला था, त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा था। मुकाबले में तो बहुत सी टीमें थीं, लेकिन मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल और लिवरपूल, इनके बीच में बहुत कांटे की टक्कर थी। और जिस तरीके से आर्सेनल इनको कड़ी टक्कर दे रही थी, क्योंकि उसने ज्यादा मैच, मैनचेस्टर सिटी ने उनसे ज्यादा मैच नहीं जीते हैं लेकिन हारे कम है, तो इस आधार पर यह टीम बेहतर रही। और पेप गार्डियोला जो उन्होंने जब से कमान संभाली है तब से मैनचेस्टर सिटी की बल्ले बल्ले हो गई है। यूएफा यूरोपियन सुपर कप हो, फीफा क्लब विश्व कप हो, ये सब खिताब उन्होंने जीते। और जब वो बार्सिलोना की टीम के साथ जुड़े हुए थे 90 के दशक में, तब भी उन्होंने अपनी टीम को 1990 से 1994 तक यही ट्रॉफी दिलाई थी। तो अब एक खिलाड़ी के तौर पर, फिर अधिकारी के तौर पर, आपके जो बढ़ते हुए कदम हैं, ये इस टीम के लिए बहुत पॉजिटिव हैं।
हम रैकेट की दुनिया की ओर रुख करते हैं। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है। पीवी सिंधु पेरिस ओलंपिक से पहले इस टूर्नामेंट में जीत दर्ज करना चाहेंगी और चाहेंगी कि उनका मनोबल थोड़ा ऊंचा हो। प्रियंका की रिपोर्ट सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे।
पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु ने ओबर कप और थाईलैंड ओपन में भाग नहीं लिया था। सिंधु पिछले साल अक्टूबर में घुटने की चोट से उबरने के बाद से फॉर्म में नहीं है। उन्होंने 2022 सिंगापुर ओपन में खिताब जीता था। मलेशिया ओपन के पहले दौर में सिंधु का सामना स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर से होगा। इस टूर्नामेंट में एंग सी यंग, चेन यूफेई, अकाने यामागुची और कैरोलिना मारिन हिस्सा नहीं ले रही हैं। अश्मिता चालिहा, आकर्षी कश्यप और मालविका बंसोड भी अच्छे नतीजे देना चाहेंगी। पुरुष वर्ग में किरण जॉर्ज अकेले भारतीय हैं। पहले दौर में उनका मुकाबला जापान के ताकुमा ओबायाशी से होगा। थाईलैंड ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब जीत चुकी जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ये टूर्नामेंट नहीं खेल रही है। इस बीच कृष्णा प्रसाद गारागा और साई प्रतीक की जोड़ी की चुनौती रहेगी। मिक्स डबल्स में बी सुमित रेड्डी और एन सिक्के रेड्डी के अलावा सतीश कुमार और आद्या वरियात की जोड़ी भी कोर्ट में उतरेगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
जाहिर तौर से ये टूर्नामेंट सिंधु के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट होगा, क्योंकि घुटने की चोट से उतरने के बाद फॉर्म में नहीं है, जैसे कि अभी प्रियंका ने बताया। और फिर एक और बड़ी बात, इसमें अकाने यामागुची, कैरोलिना मारिन जैसे खिलाड़ी हिस्सा भी नहीं ले रही हैं।
जी हाँ, बिल्कुल, एक समय था जब पीवी सिंधु भाग लेती थी और कैरोलिना मारिन, इन दोनों के बीच में जो है शर्तें लगा,
बड़ा अच्छा मैच देखने को लोगों को मिलता था, या अकाने,
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जो है मुझे लगता है कोई इस श्रेणी में इन दोनों का कॉम्पिटिशन को उस लेवल पर नहीं सोचता इनके बारे में, क्योंकि पीवी सिंधु अब बहुत थोड़ी सी पिछड़ गई हैं।
जब से घुटने में चोट लगी तो फॉर्म में नहीं आ पा रही हैं।
कोचिस के साथ भी बदला बदली का जो खेल चला है, तो आपकी निरंतरता आपके प्रदर्शन में नहीं आई है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि अगर ये जितने भी आगे तक पहुंच सके, सेमीफाइनल तक भी अगर ये पहुंच जाती हैं इस मुकाबले में, तो ये उपलब्धि होगी और वो एक तरह से इनके लिए आगे की प्रतियोगिताओं के लिए वो एक टॉनिक का काम करेगी।
लेकिन आपको लग रहा है मनोज, ये जो अश्मिता चालिहा, आकृति, आकर्षी कश्यप वगैरह आई हैं, मालविका बसोड़, इनसे भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये यंग ब्रिगेड जो आ रही है वो नेक्स्ट साइना नेहवाल, पीवी सिंधु के बाद उस श्रेणी में शामिल होंगी?
मैंने तो पिछले 10 साल में एक साथ इतनी सारी महिलाओं को उभरते हुए नहीं देखा। पुरुषों को जरूर देखा है बैडमिंटन में, जब आपके टॉप 10 में जो है कई भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन भारतीय महिला बैडमिंटन की जो कहानी है वो पीवी सिंधु और साइना नेहवाल तक ही खत्म हो जाती थी। लेकिन अब आपको डबल्स में भी और मिक्स डबल्स में भी और सिंगल्स में भी कई महिला खिलाड़ी आ रही हैं, और इनसे भविष्य में आप बहुत अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इनकी राष्ट्रीय स्तर पर तो कम से कम प्रदर्शन में निरंतरता है।
मिक्स डबल्स में भी अगर बात की जाए सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी हालांकि इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही है, लेकिन यह जबरदस्त डबल्स जोड़ी हमें मिली है। जब यह होती है तो बाकी सब लोग जरूर घबरा जाते हैं कि ट्रॉफी में इनका कब्जा हो सकता।
बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से थाईलैंड ओपन खिताब इन्होंने जीता, फ्रेंच ओपन का खिताब जीता, और कभी जब इनको ये खिताब नहीं जीत पाते जैसे कि इंडिया ओपन और मलेशियन ओपन में हमने फाइनल में इनको चूकते हुए देखा, तो उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे एक तरह से अलार्मिंग बेल थी और उससे ये प्रभावित जरूर होते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उसके बाद।
अब आईपीएल क्रिकेट की बात करते हैं। कल पहले क्वालिफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला होगा सनराइजर्स हैदराबाद से। एलिमिनेटर मुकाबले 22 मई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा, लेकिन पहले हम सुनते हैं जो कल पहला क्वालिफायर होगा उसमें क्या संभावनाएं बन रही हैं आकर्षिता से।
केकेआर प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम है, जबकि सनराइजर्स ने आखिरी लीग मैच में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराकर दूसरा स्थान हासिल किया। लीग चरण की 70 मैचों में शीर्ष 2 स्थान पर रही इन टीमों को पिछले 10 दिन में बारिश के कारण अच्छा खासा ब्रेक मिल गया है। इन दोनों को प्लेऑफ से पहले मैदान पर अधिक समय नहीं बिता पाने की चुनौती भी रहेंगी। सनराइजर्स ने पूरा मैच खेलकर पंजाब को हराया, लेकिन केकेआर और राजस्थान रॉयल्स का मैच बारिश के कारण नहीं हो सका। केकेआर ने आखिरी पूरा मैच 11 मई को खेला था। केकेआर को विकेटकीपर बल्लेबाज फिल सॉल्ट की कमी खलेगी। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 435 रन बनाए हैं। वे विश्व कप से पहले अपनी टीम इंग्लैंड की तरफ से खेलने के लिए स्वदेश चले गए हैं। सॉल्ट और सुनील नारायण ने केकेआर को शानदार शुरुआत दी है। मध्यक्रम को कप्तान श्रेयस अय्यर प्रभावित नहीं कर सके। केकेआर के लिए नीतीश राणा और आंद्रे रसेल का फॉर्म में रहना भी बहुत जरूरी है। कागजों पर केकेआर और सनराइजर्स बराबरी की टीमें लगती हैं, जिससे ये मुकाबला और रोमांचक हो जाता है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों ने 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से रन बनाकर रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया के हेड ने आक्रामक बल्लेबाजी की नई परिभाषा गढ़ी है और अब तक 1 शतक तथा 4 अर्धशतक समेत 533 रन बना चुके हैं। सनराइजर्स के पास तीसरे नंबर पर राहुल त्रिपाठी जैसा भरोसेमंद बल्लेबाज है। हेनरिक क्लासेन फॉर्म में लौट आए हैं और पंजाब के खिलाफ 42 रन बनाए। पिछले साल विश्व कप फाइनल में देखा गया था कि अहमदाबाद में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को अधिक सफलता मिलती है। 6 में से 4 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम कामयाब रही है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
कल वाले मैच की अगर हम बात करें, केकेआर प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम है जैसे कि हमें मालूम ही है, और कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच होगा। एक जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा, जैसे अभी आकर्षिता ने बताया कि बहुत टाइम तक नहीं खेले हैं, इनको बीच में गैप बहुत मिल गया है, तो ऐसे भी ऊंट बैठ सकता है, इस करवट भी बैठ सकता है।
देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद 10 दिन के ब्रेक के बाद खेल रही है, बात बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन केकेआर की टीम बेशक इसके 2 मैच बारिश में धुल गए हों, लेकिन उसमें मनोवैज्ञानिक दबाव तो रहता है। जब आप ग्राउंड पर पहुंचते हैं आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, लेकिन क्योंकि इस टीम में अब फिल साल्ट नहीं होंगे तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहेगा केकेआर को। लेकिन सनराइजर हैदराबाद और केकेआर दोनों एक ही शैली की टीमें हैं, दोनों आक्रामक खेल में विश्वास रखती हैं, और जिस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद ने इस बार कभी 277 कभी 287 तो कभी पावर प्ले में 125 रन, तो एक तरह से नए मानदंड स्थापित किए हैं इस आईपीएल में, उनको देखना वाकई बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन मुझे लगता है अटैक जो है, आक्रमण की बात करें तो सनराइजर हैदराबाद का थोड़ा सा बेहतर लगता है, जब भुवनेश्वर कुमार हैं, कैट कमिंस हैं, और इसके अलावा टी नटराजन बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, विजय कुमार विषयक हैं, नीतीश रेड्डी एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं, और शाहबाज हैं, इनके मुकाबले मुझे लगता है वहां हर्षित राणा तक ही या बहुत मिचेल स्टार्क पर भी या बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। तो उस तरह से मुझे लगता है आक्रमण जो है सनराइजर हैदराबाद का कहीं बेहतर है।
आपने बोला कि नए आयाम लिखे जा रहे हैं, हम ये भी बता दें श्रोताओं को कि पहली बार लीग में एक सत्र में 150 से ज्यादा छक्के लगे हैं और 41 बार 200 से अधिक स्कोर बनाए। क्या 2020 गेम हो रहा है, खूब छक्के और चौके देखने को मिलते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, कई बार तो हमें लगता है कि हम भी स्टूडियो छोड़कर अब सीधा मैदान में ही पहुंच जाएं और उसका लुत्फ उठाएं।
चलते चलते एक और खबर, वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया। क्वालिफाइंग मुकाबले चल रहे हैं, मुख्य ड्रॉ तो 26 मई से शुरू होगा। सुमित नागल ने पुरुष सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में जगह पक्की कर ली है। सुमित नागल से कुछ उम्मीद लगती है, क्योंकि देखा जाए तो सिंगल्स में बहुत कम खिलाड़ी हैं जो टेनिस में गए हैं और ये तो ग्रैंड स्लैम है।
मुझे तो लगता है कि इस वक्त भारत की एकमात्र उम्मीद सिंगल्स में अगर कहीं टेनिस में है तो सुमित नागल पर है, क्योंकि ये निरंतर भाग ले रहे हैं, सर्किट में हैं और अपने प्रदर्शन में सुधार कर रहे हैं। एक राउंड भी ग्रैंड स्लैम का अगर आप जीतते हैं तो उसके मायने काफी अलग होते हैं,
और वो देश के लिए भी और उनके लिए तो है ही। अब हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर चर्चा हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लिसनर्स, हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। फिलहाल शुभरात्रि।